أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آية نمبر 122 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اے بني إسرائيل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام کی. آپ کے لیے اب یہ جملہ نیا نہیں ہے, پہلے دو دفعہ گزرا اور آج آخری دفعہ اس آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں. گویا کہ جو پیچھے بات ہوئی تھی کلوزنگ بریکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے تذکرے کو جس بات سے شروع کیا تھا اسی بات پہ ختم کیا. اور محبت کا انداز ہے کسی کو بار بار اس طرح سے پکارنا, اصل میں اس کو عزت دینا بھی ہوتا ہے اور بھولا ہوا سبق یاد کرانا بھی ہوتا ہے. کون سی نعمت؟ التی انعمت علیکم, جو میں نے تم پر انعام کی تھی. پیچھے بات کر چکے, انبیاء کرام کا تار ٹوٹا ہی نہیں اس قوم میں. اللہ نے ان سب کو بہت زیادہ عقل دی, وزڈم دی, آرگنائزیشن, کام سوچ کے کرنا, طریقے سے کرنا, یہ وہ نعمتیں تھیں کہ جو اللہ کا کام کرنے والے گروہ کو بہت ہی ضروری ہے کہ اپنے اندر پیدا کرے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, اور بے شک میں نے تم کو جہانوں پر فضیلت دی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں تین بار قرآن پاک میں آ گیا کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پہ فضیلت دے دی, تو کیا امت مسلمہ سے ان کا مقام بلند ہے؟ سوال سمجھے, یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ کیا آج کے مسلمان ان کا مقام بنی اسرائیل سے کم ہے؟ اور اگر کم نہیں تو پھر اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ انی فضلتکم علی العالمین؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو امت مسلمہ کے دنیا میں آنے سے پہلے وہی مقام حاصل تھا جو آج امت مسلمہ کو ہے. یعنی یہ فضیلت عالمین پہ, کون سے عالم پہ تھی؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوثیت اور آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے تھی, اور بعد میں صرف ان لوگوں پہ قائم رہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. یہ تو تھا وہ آنر اور وہ عزت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشی تھی. لیکن اس قوم کا حال کیا ہوا کہ انہوں نے وہ بات, یہاں ایک جملہ بڑے شعور سے بولوں گی اور آپ بھی بڑے شعور سے اس کو لکھ لیں, فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی, کہ وہ بات جو پچھلے دور کے لوگوں نے محنت سے حاصل کی تھی انہوں نے وہی بات دعووں سے حاصل کرنی چاہیے. اور وہ کیا تھی؟ کہ قیامت کے دن ہم ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے بخشے جائیں گے. کیوں بخشے جائیں گے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے اور اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے, اور بنی اسرائیل کے عقائد میں یہ عقیدہ اسی طرح عام تھا جیسے آج امت مسلمہ میں چند بزرگوں کے ناموں پہ یہ بات لکھ دی گئی ہے دلوں میں اور کتابوں پہ کہ یہ قیامت کے دن ہمیں بچا لیں گے, یہ آئیں گے ہماری بگڑیاں بنائیں گے, اللہ کی پکڑ سے بچائیں گے. لہٰذا اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے ناطے آج ہم سب کو سنا رہے دوبارہ کہ وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا, اور دیکھو اس دن سے ڈر جاؤ جو یقیناً آنے والا ہے, اور اس دن نہ تو کوئی جان دوسری جان کے کام آئے گی, وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ, اور نہ کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا. مطلب کہ عدلے کا بدلہ, کرے باپ اور بھگتے بیٹا, کرے مالک اور بھگتے غلام, کرے شوہر اور بھگتے بیوی, یہ نہیں ہوگا. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَتٌ, اور نہ اس کو فائدہ دے گی شفاعت. ہاں کیا ہے ادھر؟ نفس کی وجہ سے, مونس کی بات ہے. نفس کا لفظ عربی زبان میں فیمیل کے لیے آتا ہے, لہٰذا یہاں تَنْفَعُهُ کی جگہ ہاں اس نفس کو, یعنی کوئی پرسن, کوئی انسان قیامت کے دن کسی دوسرے کے عدلے بدلے میں نہیں جائے گا. اور اگر بالفرض محال کوئی اس کی سفارش کر بھی دے تو سفارش نفع نہیں دے گی. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ سفارش سفارش ہوتی ہے, حکم نہیں ہے. کوئی بھی سفارش کر سکتا ہے آپ کے میرے لیے, لیکن جج صاحب وہ سفارش کو مانے کہ نہ مانے. تو یہاں دو باتوں کا فرق نوٹ کیجئے کہ یہ نہیں کہا کہ کوئی سفارش کرے گا نہیں, کہا لا تنفعها, نفع نہیں دے گی. مثلا آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہے, چلتے چلتے رک گئی, تو آپ کیا کہیں گے؟ گھڑی ہے مگر اس نے نفع نہیں دیا. گاڑی کھڑی ہے باہر, سٹارٹ نہیں ہو رہی, گاڑی ہے نفع نہیں دے رہی. تو کسی چیز کے اندر نفع یا تاثیر پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے. تو گویا کہ اس میں ان لوگوں کی خوش فہمیاں دور کر دیں جو مختلف ناموں سے اپنے آپ کو اس طرح سے कर लेता है कि नहीं जी, उन्होंने हमारी सिफारिश का वादा किया है, वो करेंगे। और हकीकत है, यहाँ समझ लें, ये लफ्ज़ बहुत ही ज़्यादा आपके और मेरे शौहर को भारेगा कि बाज़ दफ़ा हम किसी के बारे में ये सोचते हैं कि वो सिफारिश करेगा तो काम बन जाएगा। कोई लाजिम नहीं है। सिफारिश करना और बात है और सिफारिश का नफ़ा देना बिल्कुल और बात है। मिसाल देती हूँ, एक मिनिस्टर किसी दूसरे शख्स के बारे में सिफारिश कब करेगा? जब उसको जानता हो, पहचान हो और कुछ काबिलियत हो। इस पे पीछे बात मैंने कर दी थी कि सिफारिश बरहक है लेकिन कंडीशनल है, शरायत है। लेकिन एक दूसरी बात है कि वो सिफारिश करने जाते हैं किसी के पास कि भाई इसके मान जाइए, तो आगे से थानेदार साहब कहते हैं कि मिनिस्टर साहब, आपको पता है इसने क्या किया? कहेगा नहीं, मुझे बस यही कहा है कि मुझे एक मुकदमे में इन्होंने पकड़ लिया है, तो मैं चूंकि मिनिस्टर हूँ, इसका बचपन का दोस्त हूँ, तो मैंने कहा इसकी सिफारिश कर दूँ। कहेगा अच्छा, ज़रा थोड़ा सा वक्त है आपके पास? हाँ जी, बोलो। कहेगा आपको पता है ये 4 बच्चों को कत्ल करके आया हुआ है, कितनी औरतों की इसने इज्जत खराब की? 2-4 लफ्ज़ ही अगर वो बोलेगा ना अभी, तो वो जज साहब क्या कहेंगे, भाई मेरी जान छोड़ो, मैं नहीं इसको जानता, मैंने तो इसके जाहिर पे कयास किया, अब अंदर इसका क्या मामला था मुझे नहीं पता, और आप जो मर्जी इसके साथ करो, मैं आपको नहीं छेड़ता। बात वाजे। बाज दफा हम चंद नेक लोगों के बारे में ये सोचते हैं कि वो हमारी सिफारिश करेंगे, मान लीजिए कि वो करेंगे, और जब वो सिफारिश करेंगे तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के जरिए से पूछवा सकता है ना। ये बताओ बुजुर्ग साहब, दाता हजवेरी साहब या फलां साहब, जिनको भी लोग कोई भी किसी नाम से मानूस हो जाए, कि ये बताएं कि आपको पता है ये बंदा क्या करता था? वो कहेंगे पता नहीं, बस मुझे तो ये पता है कि ये सिफारिश की उम्मीद लगाए बैठा है। वो कहेंगे आपको पता है ये सूद के साथ काम करता था, तुम्हें पता है कि इसके कारोबार में कितनी लान तान थी, और तुम्हें पता है ये सिवा जुमे और कोई नमाज ही नहीं पढ़ता था। सच बताइए, वो बुजुर्गान जिन्होंने सारी जिंदगी तौहीद का प्रचार किया, क्या वो इस सिफारिश को सुन के अल्लाह से जिद करेंगे? आप कहेंगे मेरी जान छोड़ दीजिए, छोड़ दे। रिवायात से ये बात मिलती है कि एक हाफिज़े कुरान बच्चा होगा, और क़यामत के दिन जब सारे मामले हो जाएंगे, तो वो माँ जो के अपने गलत कामों की वजह से जहन्नुम में जा चुकी होगी, अल्लाह सुबहाना ताला उस बच्चे को बुलाएंगे, फरिश्तों को हुक्म देंगे कि लाओ उस औरत को बाहर जिसकी सिफारिश की जाएगी, क्योंकि हाफिज़े कुरान सिफारिश का हक रखता है। अल्लाह ताला उस बच्चे से कहेंगे, या जिस तरह भी कहेंगे, सिर्फ बात का मफहूम समझ लीजिए कि ये औरत तुम्हारी माँ है, अगर तुम सिफारिश करो तो इसको जहन्नुम से निकाल के जन्नत में डाल दिया जाएगा। समझिएगा, एक है किसी की सिफारिश पे जहन्नुम के बगैर ही जन्नत मिल जाए, और एक दूसरा कहे कि पहले जहन्नुम में जलो, थोड़ा वेट करो, जरा सबका हिसाब बोले, फिर तुम्हारे बच्चे को बुलाते हैं। फिर वो जहन्नुम से जब निकाला जाएगा, तो रिवायात में आता है कि उस औरत के नैन नक्श बदल चुके होंगे, जहन्नुम के अजाबों ने उसको गला दिया और जला दिया। फरिश्ते कह रहे हैं कि ए बच्चे, बच्चे से मुराद जवान ही कह ले, जो भी कह ले, कह बेटा ये तेरी माँ है, तू कहे अगर आज इसको जहन्नुम से निकाल दिया जाए तो अल्लाह ताला तुझे ये हक देता है। वो कहेगा ये तो मेरी माँ ही नहीं है, मेरी माँ तो इतनी हसीन और जमील और शम्मा महफिल थी, मैं इस औरत को नहीं पहचानता। थोड़ी सी तकरार के बाद कहेंगे जब तू पहचानता ही नहीं, चलो ठीक है, जाओ तुम वापस, जाओ इस औरत को वापस आग में डाल दो। ला तनफाउ शफातुन, याद रखिए अल्लाह के यहाँ अंधेर नगरी नहीं है, अल्लाह सुबहान तला के दर पे कोई जुल्म नहीं होगा। एक औरत अगर खुद नमाज नहीं पढ़ती, उसके अंदर 7 किस्म के ऐब है, और हादसाती तौर पे अगर बेटा आलिम हाफिज तो छोड़ दीजिए, आलिम बन जाए, पूरी दुनिया का इमाम बन जाए। आप देखिए जिस शख्स का हम किस्सा भी सुनने लगे, यहाँ भी इसको रिलेट कर लीजिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिनके अभी आगे तस्करे जब शुरू होंगे तो आप देखिएगा कि हमारे सर अपने मुहासबे से झुकते ही जाएंगे, अपने बाप की सिफारिश उनके हक में नहीं कबूल हुई। इनका बाप मुशरिक था, बेटे ने मोहब्बत के तहत वादा कर लिया कि मैं क़यामत के दिन आपके लिए सिफारिश करूँगा, और हदीस में आता है कि क़यामत के दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब लाए जाएंगे, सेम वही रिवायत जो मैंने अभी बताया, उसको जहन में रखिए, बाप पहले से जहन्नुम में है, जब क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लाएंगे और उनके बाप को लाएंगे। सही रिवायत है, बुखारी में जाके देख लें कि उनका बाप बिज्जू की शक्ल का होगा, बिज्जू क्या, मंकी, और वो भी ज़रा बिगड़ी हुई शक्ल का, और अल्लाह ताला हुक्म देंगे कि इब्राहिम अगर सिफारिश करते हैं तो कर लो, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता था कि अल्लाह ने मना कर दिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनकार कर देंगे। हदीस में आता है कि उसकी वो टेल है ना, पूछ जो होती है, उस टेल के रुख पकड़ के उस शख्स को वापस जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और ये शक्ल क्यों बदली? ताकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बेइज्जती ना हो, कि बेटा कहाँ जा रहा है और बाप का हाल देखो। सिर्फ अपने दोस्त, अपने खलील को तकलीफ से बचाने के लिए अल्लाह ताला बाप की शक्ल बदल देंगे। क्या देर नगरियां! आप अभी इब्राहिम की खिदमतें तो देखिएगा दीन के नाम पे। तो हम झूठे, पापी, गुनाहगार और किसी बुजुर्ग की कब्र पे जाके चढ़ावा चढ़ा दें, कहीं जाके हम कोई पैसे दे दें और कह दें सिफारिशें होंगी, वो कोई बेवकूफ़ लोग नहीं है। तो लिहाजा वला तनफउहा शफाअतुन, इसमें आंखें खोलने की जरूरत है, वला हुम युनसरून, और ना उनकी मदद की जाएगी, नेवर, किसी किस्म की कोई मदद नहीं होगी उनकी, क्योंकि ऐसे कामों को करके कोई अल्लाह की मदद को अपने पास नहीं बुलाता। तो यहाँ आप देखिए कि इन आयात में बनी इसराइल को खिताब करके वो नेमतें बताई, उनको उनके गुनाह बताए जा रहे हैं, उनको अल्लाह ने तौहीद के लिए पैदा किया, उन्होंने अजीबोगरीब किस्म के शिरकिया काम शुरू कर दिए, और साथ ही साथ ये बता दिया कि जब किसी कौम को अल्लाह सुबहाना तला कोई नेमत देता है, तो जब कौम नेमत का हक अदा ना करे, तो फिर अल्लाह ताला उनका अंजाम दूसरे लोगों से ज्यादा बुरा करते हैं। और नेमतों का हाल क्या? कुरान पाक में आता है, वाइन तउद्दु नेमत अल्लाह ला तुहसुहा, गालिबन सूरह नहल की आयत है, कि अगर तुम अल्लाह की नेमतें नहीं, नेमत वाहिद है, अगर तुम अल्लाह की नेमत यानी एक नेमत गिनना चाहो तो तुम उसको नहीं गिन सकते। कभी भी समझ नहीं आती थी आयत कि साथ कहा जा रहा है कि नेमतें, लेकिन वाहिद का लफ्ज है। तो आप ज़रा एक नेमत, मिसाल है दूध की नेमत ले लें, और ज़रा लिस्ट बना लें कि दूध से क्या कुछ बनता है, तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ एक दूध की नेमत का हक नहीं अदा कर सकते, बाकी चीज़ें तो पीछे कर दें। सारी रेसिपीज जो दिमाग में और अमल में है, उसको सामने रख के सोचें कि दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें अगर दुनिया में ना हो, तो हमारे कितने खाने जो थे वो पकने से रह जाते। तो इंसान को अल्लाह ताला की नेमतों को समझना चाहिए। इससे एक और बात भी पता चलती है, और वो क्या, कि शुक्रगुजारी का बेहतरीन तरीका क्या है, कि जिंदगी को नेक आमाल से आरास्ता किया जाए, अल्लाह के हुक्मों को माना जाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की जाए। और याद रखिए, अल्लाह का कानून तो इतना बेलाग है कि एक मौके पे आपने हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से कहा, या फातिमा, तू ए फातिमा बिनत मोहम्मदिन, मोहम्मद की बेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलीनी मिम माली माशीती, मांग लो मेरे माल में से जो मांगती हो, यानी आज बाप होने के नाते जो मेरे से मांगती हो मांग लो, क्योंकि ला उग्नियन की मिन अल्लाह ही शैया, मैं तुझे अल्लाह से कयामत के दिन किसी तरह की किफायत नहीं करूंगा। मतलब क्या है कि तेरे आमाल ही काम आएंगे। ये सही बुखारी की रिवायत और सही मुस्लिम की है। नंबर्स भी पूछना चाहे तो आपको बता सकती हूँ, जाके पढ़ के देख लें कि नबी की बेटी लाडली प्यारी वो फातिमा के जिसके आने पे अल्लाह के नबी खड़े हो जाते थे, वो फातिमा कि जब शहर से जाते थे कहीं बाहर तो सबसे आखिर में फातिमा को मिलते, क्योंकि आखिर में जिससे मिले उसका फिर असर ज़्यादा दिल में होता है, और जब वापस आते तो सबसे पहले उनको मिलते। इतना प्यार करने वाले कह रहे हैं कि फातिमा लाउनी अन की, मैं तुझे किफ़ायत नहीं करूँगा। तो आप देखिए कि कुरान हमारे अकीदे की इस्लाह करता है। कितने बदकिस्मत हैं वो लोग कि जो इस किस्म की बातें कर करा के अपने आप को बिल्कुल दूसरी तरफ ले जाते हैं, और नुकसान क्या उठाते हैं कि उसके बाद उनको अपने आप को बिल्कुल इस चीज़ के अंदर देखना मुश्किल लग जाता है। वो सोचते हैं कि हम वाकई अल्लाह ताला को बातों में लगाकर नऊज़ुबिल्लाह ले जाएंगे। तो अल्लाह ताला हम सबको यहाँ अपने अमल की इस्लाह चाहता है। अब यहाँ आप देखिए कि बनी इसराइल के नाते अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके देखें, तो फिर कुछ चीज़ें हमें समझ आएंगी कि आज हम मुसलमान अगर बनी इसराइल वाले ही रवैये अख्तियार करें तो हमारे साथ इंजाम कौन सा होना चाहिए, बनी इसराइल वाला। सादी सी बात है, एक सिस्टर खाना पकाती है उसी तरीके से जिससे किसी दूसरे ने पकाया, और खाना खराब हो गया, उतना ही नमक, उतनी चीनी, उतनी मिर्चें डाल दी, खाना खराब हुआ। तो सेम रेशियो प्रोपोर्शन के साथ अगर एक दूसरी सिस्टर ऐसा करेगी तो क्या खाना मज़े का बनेगा? तो जो जिंदगी है वही मौत है, जिस तरीके से आज हम अपनी दुनिया में रखते हैं यही सब कुछ है। और यहाँ आप देखिए कि सूरत बकरा के तकरीबन शुरू के सारे देखे ना, 18 रुकू, 15 ये और 3 शुरू के, ये पूरे जो थे ना रुकू, ये बनी इसराइल के नाते से उम्मत मुस्लिमा को झंझोड़ने के लिए आए थे। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तذکرہ इसके फ़ौरन बाद अब हम पढ़ने लगे हैं। क्यों? इसलिए कि बनी इसराइल के अंदर ये ख्वाहिश पैदा हो चुकी थी कि चूँकि हज़रत इब्राहिम की नस्ल से हैं और हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वजह से बचा लिए जाएंगे, इसलिए बीच में एक आयत आ गई कि जिसमें अकीदा आखरत को दुरुस्त किया गया, गो के बात पहले गुजर चुकी थी, लेकिन अब दोबारा इस बात को अल्लाह ताला ने पेश करने के बाद क्या फरमाया। अब हम ज़रा थोड़ा सा अपने ऊपर लेके सोचें कि इब्राहिम जिनका तذکرہ यहाँ पहली दफ़ा आने लगा, 30वें पारे तक आप इब्राहिम के तذکرے बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे। क़ुरान पाक में सबसे ज़्यादा तذکرہ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का और उसके बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, कि किस तरह से वो लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाते रहे और अल्लाह ताला उनका तذکرہ ज़रा किस बात से कर रहा है। मैंने ये तमहीद क्यों बांधी आयत से पहले कि ये बातें सुनकर आपके जहन में एकदम आएगा, अच्छा इब्राहिम इतने अच्छे ये वो, लेकिन तذکرہ किस चीज़ से शुरू हो रहा है? तारीफ़ों से नहीं, आजमाइशों से। वैज़ इब्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन, और याद करो कि जब इब्राहिम को इसके रब ने चंद बातों में आजमाया, यानी आजमाइशों का तذکرہ। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के काम करने वालों का चुनाव उनके टैलेंट पे नहीं होता, उनके कैलिपर पे नहीं होता। जैसे दुनिया में किसी को जॉब देनी हो तो क्या पूछते हैं? मास्टर्स किया हुआ है, पीएचडी होल्डर्स हैं, डॉक्टर हैं, ये पूछते हैं ना। तो एक जुमला अभी से लिख लीजिए कि दुनिया में चुनाव या जॉब किसको मिलती है? जिसमें कुछ टैलेंट होता है, कोई डिग्री होती है। जबकि अल्लाह के काम करने के लिए जो क्राइटेरियन है ना, वो क्या है? इज़्ब्तला इब्राहिम और रब्बुहु बिकलिमातिन, आजमाइशें। अल्लाह ताला ने जिन बंदों से अपने दीन के काम करवाने होते हैं ना, उनको पहले आजमाइशों की भट्टी में पकाता है। क्यों? इसलिए कि कच्चा घड़ा किसी काम का नहीं होता। मैं और आप कच्चे घड़े में पानी का 2 गिलास नहीं डालेंगे कि हमारा पानी गिर जाएगा, तो क्या अल्लाह अपने दीन का काम इतने लोगों पे डाल दे, ऐसे कच्चे लोगों पे, कि ज़रा सी मुश्किल की आंधी आई और वो भिदक गए और निकले ऐसे कि फिर उनको वो बर्दाश्त ही ना कर सके। आए थे बड़े शौक से और ज़रा सा होश आया कि किधर चल पड़े हैं तो दूसरी तरफ चल पड़े। तो अल्लाह सुबहान तआला के चुनाव की पहली चीज़ यहाँ नोट कर लीजिए कि जिसकी बुनियाद क्या थी, कि अल्लाह ताला आजमाइशें करवाता है। पीछे हजरत आदम का तस्करा था, याद है? आज आगे भी जाके उसको टैली कराऊंगी, लेकिन यहाँ सिर्फ नोट कर लें कि इब्राहिम का चुनाव आजमाइशों से हुआ। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने किस चीज़ की वजह से चुना था, याद है कुछ? अल्लम आदम अलस्मा कुल्लहा, इल्म की बुनियाद पे। ये जुमला रख लें, आगे जाके जहाँ आयत आएगी तो लिखाऊंगी कि आदम का चुनाव इल्म की बुनियाद पे हुआ, इब्राहिम का चुनाव मुसीबतों की वजह से हुआ, आजमाइशों की वजह से हुआ। फ़र्क क्या है? ये जाके आगे जहाँ बात आएगी तो इंशाल्लाह देखेंगे। सवाल पैदा होता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन थे, तो नोट कीजिएगा, पीछे थोड़ी सी बात हमने की थी, कुछ बातें और आगे रख लीजिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से तकरीबन 4000 साल पहले की शख्सियत है। इसके ऊपर भी आप बहुत कुछ सुन सकते हैं, बाद में इंशाल्लाह कुछ रेफरेंसेस आपको दूंगी ताकि आप उनको जाके सुने, जिसमें एक लेक्चर यासिर काजी साहब का ही है, लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उसमें बड़े खूबसूरत तरीके से उन्होंने इस बात को पेश किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने चुना किस तरह से। ज़रा समझ लीजिए कि इब्राहिम के 3 बेटे थे, हम तो अमूमन 2 बेटों का नाम जानते हैं ना, एक इस्माइल अलैहिस्सलाम और एक उनके बेटे थे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। इसी तरह से उनका एक तीसरा बेटा भी था, बनी इस्माइल हज़रत इस्माइल की नस्ल से चली, जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। ये हज़रत हाजरा के बतन से पैदा हुए। हज़रत हाजरा कौन थी? जो फिरौन ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तोहफे में दी थी एक सफ़र में। हज़रत इब्राहिम ने उनको आज़ाद किया कनीज़ और बांदी की सूरत में और उनसे निकाह कर लिया, ठीक है। और हज़रत इस्माइल पहले बेटे थे। दूसरी बीवी हज़रत सारा थी, इनसे हज़रत इसहाक पैदा हुए, जिनसे फिर हज़रत याकूब पैदा हुए और आगे उनके 12 बेटे थे और इससे उसको सिलसिला चल पड़ा, उसी से वो बनी इसराइल थे। ये बातें हम पीछे पढ़ चुके। इस्माइल को बचपन में ही बिल्कुल बंजर और बेआबाद जगह में अल्लाह ताला ने भिजवा दिया अपनी माँ के साथ। वहाँ से मक्का वाले उठे। मक्का वालों का जितना गुमान था ना, वो जो पीछे पढ़ा लई सते नसारा ला शय नर अल्लाह ने उस तरह का कैसी बात अनपढ़ों ने भी की थी, तो मक्का वालों का फ़ख्र हज़रत इस्माइल की वजह से था कि अल्लाह ने उनकी एड़ियों से जमजम का कुआं निकाल दिया और बेजान और बंजर जगह को आबाद कर दिया, और वो घर जो तूफ़ान नूह में मिट गई थी जिसकी शाखें, वो दोबारा हज़रत इस्माइल और इब्राहिम के ज़रिए से आबाद होता दिखेगा, जो आज के सबक में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह से बनी इसराइल जो कि मदीना में नबी सल्लम के सामने थे, वो बनी इसराइल की वजह से अपना फ़ख्र करते थे। नतीजा क्या हुआ कि नस्ल जो थी वो इब्राहिम के दो बेटों से चली। कौन सी? बनी इसराइल की भी और बनी इस्माइल की भी। ये बात तो मेरा ख्याल है कि अब आपको याद हो जानी चाहिए ना, ठीक है। हज़रत इब्राहिम के बाद नबूवत हज़रत इस्माइल को तो मिली, लेकिन इसके बाद तकरीबन 3,000 साल का फासला था कि कोई नबूवत नहीं आई। यानी आप कह लें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बीच में 3,000 साल का वक्त गुजरा, कोई नबी नहीं आया, ठीक है। उस तरफ दूसरी तरफ क्या था कि बनी इसराइल में नबूवत का तार टूटा ही नहीं, मुसलसल नबी आ गए। पीछे हमने पढ़ दिया बलाकत कफ़ैना, ठीक है। इसी तरह हज़रत इब्राहिम का एक तीसरा बेटा भी था जिसका नाम मिद्यान था, और ये आपकी तीसरी बीवी कतूरा के वतन से पैदा हुए। ना लिख सके तो कोई फिक्र की बात ना करें। उनमें हज़रत शुएब आए थे, ठीक है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम भी हज़रत इब्राहिम की नस्ल से थे। ये है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नसब नाता कि एक शख्स, और मज़े की बात यह कि करीबन बुढ़ापा उनके पास कोई बेटा नहीं था, बेटी भी नहीं थी, औलाद की नेमत से महरूम। 20 के 30 के 40 के 50 के 60 70 से 80 साल की उम्र के हो चुके थे हज़रत इब्राहिम, और ऐसे लगता था कि वो बिल्कुल इसी तरह से दुनिया से चले जाएंगे कि कोई इनका बाद में नाम भी नहीं लेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको सबसे पहले फिर बेटा इस्माइल दिया। क्या पता चलता है, कोई मायूस ना हो, अल्लाह ताला की नेमत है, वो कब दे दे। आपके डॉक्टर्स कह दें 40s में आगे कुछ नहीं हो सकता, ये कर दें वो कर दें, अल्लाह ताला जब चाहे दे सकता है। और इब्राहिम को फिर देखे कि आखिरी उम्र में दिया ना 70 80 के बाद, और फिर 3 बेटे दिए अपने ऊपर लें। आज के ज़माने में अगर आप किसी को देखें कि पूरी ज़िंदगी औलाद की नेमत से महरूम रहा और आखिरी उम्र में जो औलाद आई तीनों के तीनों आलिम बन गए, मक्का के अंदर हरम के इमाम बन गए, कैसा लगेगा। लेकिन ये सब कुछ इसका तذکرہ अल्लाह ताला भी नहीं कर रहे, बल्कि वइज़्तला इब्राहिम और रब्बहू, इब्राहिम को आज़मा लिया उनके रब ने। ये है एक बंदे की असल क्वालिफिकेशन। होता क्या है कि जब हम अल्लाह के दीन के कोई काम करने की नीयत करते हैं, कुछ लोग होते हैं उन्होंने बड़ी दुआएं मांगी होती है, अल्लाह हमसे कोई दीन का काम करवा, अल्लाह ताला हमसे कुछ करा 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 करवाना है। लेकिन अभी वो क्राइटेरियन ही नहीं है ना हमारे अंदर वो गुण कि जो अल्लाह ताला के दीन के काम करने वालों में होने चाहिए, और ना हमारी वो शख्सियत। नतीजा क्या होता है कि हम फिर उस चीज़ के अंदर अपने आप को डाल लेते हैं और दूसरी तरफ चल पड़ते हैं। नुकसान हुआ कि इस चीज़ पे नहीं रहे, बात गड़बड़ हो गई, पीछे पड़ गए, मायूसियों में चले गए। ये देखिए कैलेंडर, ये आप देखिए कि आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है, सबसे पहले नबी आपको पढ़ा जा रहा है इधर से। इसके बाद आप देखिए शीस अलैहिस्सलाम के नाम से कुछ ऐसे नबी हैं जो बिल्कुल हमारे लिए अननोन है। इसको मैं रोक के आपको दिखाती हूँ, फिर इंशाल्लाह आप ज़्यादा इसको इंजॉय करेंगे। ये देखिए पहले शख्स हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, हदीस में आता है कि आदम और नूह के बीच में 10 करन गुजरे, यानी 10 जनरेशंस गुजरी। इनके नामों में सिर्फ आपने जो नाम शायद पहले कभी सुना होगा वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का सुना होगा, ठीक है। इस दौर में दुनिया के अंदर शिर्क शुरू हो गया। चंद नेक लोग थे, लात मनात उज्जा जाओ किस तरह के, वो जिंदा थे तो लोग सोचते थे कि उनकी नेकियों की वजह से हमें जन्नत मिलेगी। फौत हुए तो शैतान ने इस तरह का धोखा दिया कि अब ये मर गए हैं तो तुम इनके स्टैचूज को चौक से बना लो, कोयले से बना लो, होते होते वो पत्थरों के बुतों की सूरत में उनको बना लेते हैं। अगली नस्लों के पास शैतान आया तो उसने कह दिया कि भाई इनको तुम ऐसा करो कि अपने उस जगह पर रख लो जहाँ इबादत करते हो। ये एक अलग कहानी है, फिर किसी मौके पे आएगी, दोबारा तो सुनिए। लेकिन हज़रत नूह के दौर में पूरी दुनिया के ऊपर एक तूफान आ गया था, ख़त्म हो गई कहानी। ये आप देख रहे हैं कि ये जो दौर है ना, एक ट्री भी होता है, इंशाल्लाह आपके लिए यहाँ के लिए भी मंगाएंगे। आप ये देखिए, हज़रत नूह के 3 बेटे थे, हाम, साम और याफिस। चौथा बेटा कनान था, उस तूफान में डूब गया, नाफरमान था, नबी का बेटा भी था, अल्लाह ने कहा निकाल दो। उसके बाद क्या हुआ, इन 3 बेटों से पूरी दुनिया चली है, सबसे पहले आदम, फिर नूह से। इसीलिए हज़रत नूह को आदम सानी भी कहते हैं, सेकंड एडम। वाय कि अब जो दुनिया इस वक्त मौजूद है वो इनकी वजह से। इनके बेटे हाम जब गए तो इजिप्शियंस, अफ्रीकन्स एंड इंडियंस जो है ना, ये हज़रत हाम की नस्ल से हैं, ठीक है। इसी तरह देखिए, याफिस जो है इनसे तुर्की, चाइना और इसी तरह यूरोपियन कंट्री, जो हम सब इधर इस वक्त रहते हैं, अगर हम बाय बर्थ इधर है तो ये याफिस की नस्ल से थे। साम जो था ना तीसरा बेटा, इनसे एरेमियंस, ये एक नाम से नाम ना सुने बस गौर कर लें कि ये देखिए, हज़रत नूह के बाद इनके बेटे के नाते हज़रत हूद आए और हज़रत सालेह, इनका बहुत तस्करा आप कुरान पाक में सुनेंगे। होता कि आगे चलते जाएँ, अब आप देखिए कि ये कुछ ऐसे इलाके हैं जिनको निगविस कीजिए, तो हज़रत नूह के बाद जो सबसे पहले फिर बड़े नबी आए वो हज़रत इब्राहिम थे, ठीक है। हज़रत नूह की वजह से शिर्क का तोड़ किया गया था। आदम की तरफ से सिर्फ दुनिया आबाद हुई थी, याद रखिए कि हज़रत आदम को शरीयत नहीं मिली, क्योंकि इंसान अपनी फितरत पे थे, गुनाह था ही नहीं लोगों में, गुनाह का ख्याल भी नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता जब शिर्क शुरू हुआ, फिर अल्लाह ताला ने हज़रत नूह को सहीफे दे के भेजे। खैर, हम चलते हैं हज़रत इब्राहिम पे। ये देखिए, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 3 बेटे, बड़ा बेटा इस्माईल अलैहिस्सलाम, ठीक है। इस्माईल अलैहिस्सलाम को बचपन में कहाँ छोड़ दिया, वादी में। ये देखिए, ये सारे वो कबीले हैं, केदार, अदनान, ये अल्लाह के नबी के नसब को पढ़ें तो उसमें भी आएंगे सारे नाम। होते होते अब्दुल्ला कौन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप, और इधर से एक ही चिराग निकला जिसको अल्लाह ने सिराज मुनीरा का। ये नस्ल कहाँ गई, इब्राहिम पे आई, ठीक है। आगे जाके देख लीजिए, इधर से इसहाक, इसहाक के बेटे याकूब, याकूब के ये 12 बेटे, यहूदा, यहूदा की नस्ल से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, दाऊद के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम, और इनके बाद आगे आप देखिए तो ज़करिया अलैहिस्सलाम और याहया उनके बेटे, और इसी नस्ल से हज़रत ईसा आ गए। इधर से देखिए, याकूब के जो एक और बेटे थे बिनजामीन, सूरह यूसुफ में पढ़ेंगे, हज़रत यूसुफ के छोटे भाई थे, तो बिनजामीन की नस्ल में से मत्ता और यूनुस पैदा हुए, यानी उस जनरेशन से आए। आगे चल के देख लीजिए, हज़रत इसहाक जिसे ईसू भी कहते हैं, उनकी नस्ल से एमोस और अय्यूब अलैहिस्सलाम नबी पैदा हुए। और वापस आते जाइए हज़रत याकूब के बाकी बेटों में तो यूसुफ, ठीक है, यूसुफ का नाम पढ़ के देख लें, यूसुफ से इफ्रासिम, नो, ये कुछ नाम है। और इधर से आप देखिए कि अलीशा नबी पैदा किए गए, याह्या, ये सब नाम करते करते आप देखिए कि जब हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तस्करा सुना तो पता क्या चला कि इब्राहीम पर अल्लाह का फजल क्या था। अब आप देखिए कि इस पूरे चार्ट को ले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े नबी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े नबी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े नबी, तीसरी तरफ आ जाइए, ये हैं हज़रत इब्राहीम के 3 बेटे, मिद्यान इनका नाम था, मदियन में की तरफ गए और मिकाल, और उसके बाद उस नस्ल से हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम आए। अब अगर आप इंजॉय कर रहे हैं तो फिर मैं और बताऊं, नहीं तो इस पर रोक के आपकी मुश्किल आसान कर दूं। ये देखिए, एक तरफ तराजू का पलड़ा सारा बनी इसराइल के साथ झुका हुआ है, जितने बड़े बड़े नबी, ईसा, मूसा, यूनुस, अय्यूब और लाइक दिस वन, ये तो छोटे हैं, आपको एक किसी दिन पूरा भी दिखाऊंगी, आज मैंने ये आपको खास तौर पर हज़रत इब्राहिम को नज़र में रखते हुए दिखाया। दूसरी तरफ देखिए कि ये है मक्का के लोग, शोएब अलैहिस्सलाम एक नबी गुजरे और उसके बाद से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बीच में तकरीबन 3000 साल तक का अरसा गुजर गया। पता क्या चला कि अल्लाह ताला ने आज दुनिया में साहिब रखे हैं ये सब के सब हज़रत इब्राहिम के तवस्सुत से थे। अब आज हम किसी बड़े लीडर का जब तذکرہ करते हैं तो भला क्या करते हैं, उनके कारनामे, उन्होंने ये किया, तस्वीरें और उनके नाम पे लंबी लंबी कहानियाँ। अल्लाह सुभान व तआला ने इन सब बातों की जगह क्या कहा, व इज़्ज़तला इब्राहिम। यहाँ से याद रखिए कि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई गम आए ना तो मान लें कि अल्लाह का चुनाव शुरू हो गया। शर्त एक ही है, सिर्फ एक शर्त है इस पर, ओनली वन, रदीतु बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लामी दीनम व बि मुहम्मद नबिया, मैं अल्लाह के रब होने पर राजी हूँ, मैं अल्लाह तेरी हर कदर पे खुश हूँ, बिल कदर खैरी ही व शर्री ही मिन अल्लाह। जो बंदा अल्लाह ताला के वो फैसले जो नफ्स पे बड़े बोझल पड़ते हैं पसंद नहीं आते, किसी को बीमार होना पसंद होता, सच बताएं, सर में दर्द हो जाएंगे ना तो हम ये इतना प्यारा कलाम छोड़ के जाके परेशान हो जाएंगे कि फोकस नहीं हो पा रहे, उंगली में दर्द, दांत में दर्द। लेकिन जो कहे कोई बात नहीं, अल्लाह ने बीमार किया है, बस उसी को कहूँगी कि मुझे पहुँचा के इधर बिठा दे। जो बीमारी के नाम पे घर बैठ गया, अल्लाह ना करे वो बैठ ही जाता है। और अल्लाह को कौन पसंद है, जो बीमारियों में भी खड़े रहे, मुस्कुराए, नहीं नहीं मैंने गिव अप नहीं करना, लोग मेरा हाल पूछे तो मुस्कुराहट और स्माइल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो याद रखे, लोग रोते और धोते ही रहते हैं ना, वो बिल्कुल ही रोते रह जाते हैं। ये बातें करते हुए मुझे अपने एक बहुत करीबी रिश्तेदार की बात याद आ गई, डेथ बेड पे थे, साफ डायग्नोज था कैंसर और आखिरी दिन सब कुछ थे। तो बहुत करीब से रहने का मुझे उनके साथ जब मौका मिला तो मैं उनसे पूछती थी कि आप क्या फील करते हैं, सच बताओ, मैं अपने दिल से, पता तो किसी को भी नहीं अपना, मुझे भी नहीं अपना पता और आपको भी नहीं पता, लेकिन जब बंदा बीमार होता है तो अमूमन जहन में ही आता है कि बीमार जल्दी मर जाएगा सेहतमंद से। तो मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उनसे अकेले में बातें करती होती थी, क्या महसूस करते हैं, क्या होता है, पता उनको भी था अपनी बीमारी का। मैं ये जानना चाहती थी कि अगर मुझे ज़िंदगी में कभी अपनी मौत का पता चल जाए तो मेरे दिल पर क्या गुजरेगा। आना तो है, पता तो आज भी है, लेकिन ज़्यादा होती है। तो वो ये बात कहा करते थे कि मैं अपने अल्लाह से बहुत खुश हूँ, रज़ी तो बिल्लाहि रब्बन। और यकीन करें, मैंने उनको देखा है इतना टेंक्चर वाली दवाई पिलाते हैं उस बीमार को कि जब मैं ख़ुद उनके लिए ग्लास में डालती थी ना तो उसमें से ना धुआं निकलता था जैसे तेज़ाब होता है, बिल्कुल, और वो देखने में ऐसे लगता था जैसे एप्पल जूस। तो वो जब किसी ने देखने का ना तो हंस के कहते थे एप्पल जूस पी रहा हूँ। और हम सब दूसरे लोग जो थे जो खाते थे तो उनकी बेगम जो थी वो उनके लिए फीका खाना पकाती थी जिसमें ना नमक ना मिर्च, लेकिन वो प्याला जब उनके सामने आया सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं वीक नहीं हूँ, कहना जितना मेरा मज़े का खाना है बाजी, खा के तो देखें मेरा खाना कितना मज़े का। ये है फातिमा हुन्ना। हम तो अपने करीब की शख्सियात को देखते हैं ना, हमारा हाल क्या है कि जहाँ अल्लाह की मदद आनी शुरू होती है ना हम उससे एक सीढ़ी पीछे रुक चुके होते हैं, सॉरी गिव अप, दोनों हाथों पाँव से गिव अप, चूँकि बीमार हूँ मैं नहीं कर सकती, चूँकि ये हूँ मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं ले सकता। याद रखिए, अगर आप में से अगर जितने लोग यहाँ कोर्स कर रहे हैं ना, कुछ के लिए तो बड़ा आसान है, हो सकता है आपको उनके लिए बड़ा रश्क आता हो अगर आप उनको जानते हैं। मैं आपको दिल की गहराई से बता दूँ कि आप में से वो बंदा कुंदन बनेगा, नंबर एक, ऑफकोर्स आसान है तो वो फिर नेमतों को और ज़्यादा इस्तेमाल करे, शुक्राने में जो काम दूसरे नहीं भी कर सकते वो उनका भी कर दे, जो दूसरा नहीं काम कर सकता वो कर दे, जो दूसरा नहीं दे सकता वो उसका दे दे, जो कर दे, जो नहीं करता उसको भी अल्लाह चुनेगा, लेकिन उनको तो ज़रूर चुनेगा जो मुश्किलात में आते हैं, कहीं घरेलू मुश्किलात, कहीं माली मुश्किलात, कहीं बच्चों की जिम्मेदारियां, कहीं फलां और फलां, क्योंकि अल्लाह बोझ डालने से पहले चेक करता है।